कुछ याद दिलाता है, किसी के साथ होने का एहसास दिलाता है। फिजा भी मस्त है, यादें भी ताजा हैं। यह मौसम किसी का प्यार दिल में जगाता है। भाई हमारे दिल में तो बस अपने प्रिय श्रोताओं का ही प्यार जगता है, तभी हर रोज हम आ पहुंचते हैं लेकर उनके लिए समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सभी। वेल सभी श्रोताओं को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बृहस्पतिवार के एक नई दिन की एक नई सुबह में आइए शुरू करें समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और तन्वी खुराना, हम दोनों का नमस्कार।
रवि, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड ऑफ कोर्स द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, रवि हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू आवर प्रोग्राम मैगजीन दैट इज आज सवेरे, एंड बिकॉज टुडे इज थर्सडे, सो जस्ट वांट टू विश एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी थर्सडे। आई विश यू हैव अ थर्सडे एज ब्राइट एज योर सनशाइन एंड एज सक्सेसफुल एंड जॉयफुल एज अ रेनबो। So rise and shine because it's Thursday. So laugh on your mistakes and maybe learn from them. Be hopeful and wonderful always. Let's just begin our program, today's News Magazine program, Aaj Savere, with the headlines.
जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंध केवल सरकारों द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इन संबंधों को मजबूत करने के लिए लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। वियना में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से भारत और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग छोर पर स्थित हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच बहुत समानताएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र हम दोनों देशों को जोड़ता है। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता, समानता, बहुलवाद और कानून के शासन के प्रति सम्मान हमारे साझा मूल्य हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी हैं और विविधता दोनों देशों का मुख्य बिंदु है। उन्होंने कहा कि इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करने का एक बड़ा माध्यम चुनाव है। श्री मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रिया में कुछ महीनों में चुनाव होंगे, जबकि भारत में लोगों ने हाल ही में लोकतंत्र का त्यौहार मनाया। श्री मोदी ने कहा कि 41 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये लंबा इंतजार एक ऐतिहासिक अवसर पर खत्म हुआ है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रिया परस्पर मित्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की अपनी सार्थक यात्रा समाप्त करने के बाद वियना से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।
Adding to the same news, just want to say, in a social media post, Prime Minister said that new vigor has been added to the friendship between the two nations. He expressed happiness to attend diverse programs while in Vienna. Mr. Modi expressed gratitude to Chancellor Karl Niemeyer, the Australian government and the people for their hospitality and affection. Mr. Modi will interact with eminent economists in New Delhi today. He will elicit their views and suggestions for the upcoming union budget. Apart from economists, experts from different sectors will also attend the meeting along with Vice Chairman Suman Berry and other members of the Niti Aayog. The budget session of Parliament will begin on 22nd of this month, and on 23rd, Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget 2024-25 in the Lok Sabha. It will be the first budget presented by the Narendra Modi government in its third term. An interim budget was presented in February this year due to the Lok Sabha election.
बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। ये आयोजन बिम्स्टेक समूह के सदस्यों को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का पहला संस्करण पिछले वर्ष जुलाई में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक बहुआयामी सहयोग के लिए 7 दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है।
The Ministry of Health and Family Welfare has clarified that existing district and referral hospitals, which have been converted into medical colleges, will continue to receive funding from the central government. Union Health Secretary Apurva Chandra has written a letter to states and union territories in this regard. The Ministry of Health has said that of these 157 medical colleges, 108 have already been functional as of now. Out of these 157 colleges approved, 40 are located in the aspirational districts. The ministry said a centrally sponsored scheme to provide central funding support for opening new medical colleges by strengthening and upgrading the district hospitals was introduced in 2014.
4885 तीर्थयात्रियों का एक अन्य जत्था पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। ये जत्था आज तड़के 191 वाहनों के काफिले में रवाना हुआ। इस जत्थे में 3622 पुरुष, 1086 महिलाएं, 14 बच्चे, 111 साधु और 52 साधुवियां शामिल हैं। इनमें से 1894 तीर्थयात्री तड़के करीब 3 बजे बालतल और 2991 तीर्थयात्री सुबह करीब 3:30 बजे पहलगांव आधार शिविर के लिए रवाना हुए। बालतल और पहलगांव से तीर्थयात्री पवित्र गुफा के लिए आगे की यात्रा शुरू करेंगे।
In Uttar Pradesh, at least 22 people have lost their lives in rain-related accidents in the last 24 hours. 11 people died in Pratapgarh, while 6 in Sultanpur and 5 people lost their lives in Chandauli district due to lightning. 633 villages of 12 districts including Lakhimpur Khiri, Sitapur Pilibhit Shravasti, Balrampur, Basti, Barabanki, Gonda, Balia, Siddharthnagar, Shahjahanpur and Kushinagar are reeling under the flood fury. Thousands of acres of agricultural land is inundated in water due to flood and around 8 lakh people are affected. Chief Minister Yogi Adityanath will visit the flood affected areas of Shravasti district in Tarai region today.
Aur Tanvi, ab khel ki kuch khabrein ho jaye.
Yes, absolutely. Let's begin with football. In football, England has advanced to the UEFA European Champions 2024 finals after a thrilling 2-1 victory over the Netherlands in the second semi-final in Dortmund this morning. England's substitute, Ollie Watkins, found the back of the net in the 90th minute to secure a dramatic victory for the Three Lions. The Dutch initially took the lead with a stunning long-range strike from Xavi Simons in the 7th minute. Later, England's captain Harry Kane equalised with a penalty, setting the stage for Watkins' late heroics. England will take next on Spain in the summit clash on 15th of this month. Meanwhile, Colombia has secured a spot in the Copa America 2024 final, defeating Uruguay 1-0 in the second semi-final in North Carolina, USA this morning. Despite Uruguay's superior ball possession, they were unable to convert their chances into goals. Colombia will face defending champions Argentina in the final on 15th of this month.
और तनवी, इधर टेनिस में भारत के एन श्रीराम बालाजी और इक्वाडोर के उनके जोड़ीदार गोंजालो एस्कोबार कल शाम ब्रावो ओपन चैलेंजर के पुरुषों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत इक्वाडोर की जोड़ी ने बोलिविया के बोरिस एरियास और फेडरिको जेवालॉस की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-3, 6-0 से पराजित किया। ये जोड़ी आज शाम क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर और अर्जेंटीना के गुई लैंड्रो जुरान से भिड़ेगी। इस बीच पुरुषों के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल अर्जेंटीना के पेड्रो कैचिन से एक कड़े मुकाबले में 4-6, 5-7 से हारकर प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए हैं। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं तन्वी खुराना।
Let's begin with Chennai. The Tamil Nadu Engineering Admissions Committee released the rank list for engineering admissions yesterday. More than 2 lakh students have applied for engineering counselling, which is 10% more than the previous year. Around 1.8 lakh seats will be available in 470 engineering colleges for counselling. Despite the new rule asking students to join within 7 days of seat allotment, around 400 students in Anna University's 4 campuses are vacant as students quit these seats after getting medical seats last year. If we talk about Bangalore, Karnataka Energy Minister K.J. George informed media persons in Raichur yesterday that the thermal power stations in Raichur and Bellary produce record electricity between January and May this year. The Raichur Thermal Power Station, Yaramaras Station and Bellary Thermal Power plants produce 2,000 million units of electricity daily on an average. In April alone, the units produced 2,400 million units of power every day, marking a record achievement. Ruling out the closure of the obsolete first unit of Raichur Power Station, the minister said that funds are allocated for its repair and modernization. And if we talk about Hyderabad, Telangana state government has presented 25 lakh rupees each to 5 Padma awardees. Chief Minister A. Revanth Reddy presented these reward cheques of 25 lakh rupees last evening. The Padma awardees received the reward include Gaddam Samaya, an exponent of traditional folk theatre art form Yakshagana, Dasari Kondapa, who is an expert in playing the indigenous rural stringed instrument Buravina, V. Anandachari, a traditional temple sculptor, K. Vitthalacharya, selflessly promotes libraries, and Ketavat Somwal preserves heritage of Banjara community. All these received Padma Awards during a recent ceremony in Delhi. So these were the updates from three cities, Hyderabad, Bangalore and Chennai. Now let's ask Ravi about rest of the three cities, which are Delhi, Mumbai and Kolkata.
बिल्कुल तन्वी, शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी के गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए कल 411 करोड़ रुपए लागत की 480 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये मंजूरी विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई ग्राम विकास बोर्ड की मीटिंग में दी गई। इससे दिल्ली के गांवों के विकास कार्यों को गति मिलेगी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत गांवों के अंदर सड़क, नाली, जल निकायों, सामुदायिक केन्द्र, पार्क और खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे। मंत्री गोपाल राय ने सभी अधिकारियों को ग्राम विकास की परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने कल यमुना नदी पर स्थित पुराना लोहा पुल और यमुना बाजार इलाके में बाढ़ को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान राजस्व विभाग और बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने राजस्व मंत्री को बताया कि बाढ़ को लेकर विभागों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाढ़ की स्थिति में मोटर बोट, गोताखोर और मेडिकल टीमें तैयार रहेंगी। इसके अलावा राहत शिविर लगाने की तैयारियां भी की गई हैं। उन्होंने कहा कि मॉनसून के दौरान यमुना के ऊपरी हिस्सों में भी पूरी तरह नजर बनाए रखी गई है ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। बढ़ते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 कल पारित कर दिया है। इसमें 5 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराजे देसाई ने 28 जून को विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था। विधेयक के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने पर 3 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कारावास की अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। सेवा प्रदाता पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही प्रदाता को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। महाराष्ट्र विधान सभा मंडल ने 94,889 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगें भी पारित कर दी। अनुपूरक मांगों में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए 5,555 करोड़ रुपए और किसानों को 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए निःशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए 2,930 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। बढ़ते हैं कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल में कल मतदान शांतिपूर्ण रहा। राज्य में 4 विधानसभा क्षेत्रों रायगंज, बागदा, राणाघाट दक्षिण और मानिकतला में उपचुनाव हुआ। विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कई जगहों पर चुनाव प्रभावित किया और धांधली की है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया और उन्हें निराधार बताया है। मानिकतला विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ बूथों पर वोटों में कथित धांधली के बाद भाजपा उम्मीदवार ने पुनर्मतदान का आग्रह किया है। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और तन्वी के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तन्वी, वैसे मौसम आज का बहुत ही शानदार था।
एब्सोल्युटली, आफ्टर यस्टरडेज रेन इट्स वंडरफुल। एंड डिड यू ड्रेंच्ड इन रेन यस्टरडे?
बिल्कुल, कल मैं अपनी वाइफ के साथ बारिश में भी किया था।
दैट्स अमेजिंग। एंड वी ऑल एंजॉय टी एंड आई थिंक सम पकौड़ा।
जी बिल्कुल,
दिस वेदर।
तो राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का हाल अपने श्रोताओं को दे देते हैं। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता की अगर बात करें तो वहां बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
Absolutely, and now that the monsoon is here, I think all the cities are expecting some cloudy sky with light rain.
जी बिल्कुल।
So if we talk about Chennai, Bengaluru and Hyderabad, they are all expected to have generally cloudy sky with either light rain or drizzle. The minimum temperature for Chennai was 28 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. If we talk about Bengaluru, the minimum temperature was 20 degrees and maximum will be around 30 degrees. And for Hyderabad, the temperature will hover somewhere between a minimum of 24 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
If we talk about the year 1832, British Parliament finally rejected to remove the appeal of the Hindus Puritans against sati abolition as demanded by traditional Orthodox Indians.
1979 में आज के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काईलैब विखंडित होकर ऑस्ट्रिया के पश्चिमी तट के समीप समुद्र में गिर गई थी।
The year 1994 was special because Inspector General of Delhi, Kiran Bedi, won Magsaysay Award for Public Service. The Raymond Magsaysay Award is an annual award established to perpetuate former Philippine President Raymond Magsaysay's example of integrity in governance, courageous service to the people and pragmatic idealism within a democratic society. In the year 1998, Indians bagged a silver and a bronze at the International Physics Olympiad. The International Physics Olympiad is an annual physics competition for high school students. It is one of the International Science Olympiads. The first Olympiad ever was held in Warsaw, Poland in 1967. If we talk about the year 2000, Amrita Preetam, noted literature, honored with the highest award for Punjabi literature for the century, Shatabdi Samman.
सन 2002 में आज के दिन चांगशांग दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सन 2003 में लाहौर में दोस्ती बस और दिल्ली से सदाए सरहद बस का परिचालन हुआ। सन 2004 में एचआईवी एड्स पर एशियाई मंत्रियों का सम्मेलन बैंकॉक में हुआ। और सन 2007 में आज के दिन चर्चित चित्रकार एमएफ हुसैन ने न्यूयॉर्क की कला प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। और तन्वी, अब समय हो गया है कुछ महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे का, जो परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक हैं। आपका जन्म हुआ 26 जून 1918 को, लेकिन निधन हुआ 11 जुलाई 1994 को। रामा राघोबा को परमवीर चक्र का यह सम्मान सन 1948 में मिला। ये बॉम्बे इंजीनियर से जुड़े हुए थे और इन्हें राजौरी को फिर से फतेह करने के संबंध में याद किया जाता है। सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे ने जिस बहादुरी, धैर्य तथा कुशल नेतृत्व से ये काम पूरा किया और भारत को विजय का श्रेय दिलाया, उसके लिए ही उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ये सम्मान उन्होंने तन्वी स्वयं प्राप्त किया था।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।
अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना,
अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।
अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना,
अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
और तन्वी, अब जानकारी दे देते हैं अपने श्रोताओं को, पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित प्रसिद्ध भारतीय लेखक भीष्म साहनी के बारे में, जिनका जन्म तो हुआ 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी अविभाजित भारत में, लेकिन निधन हुआ 11 जुलाई 2003 दिल्ली में। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भीष्म साहनी को उनके लेखन के लिए तो याद किया ही जाता है, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए भी वे बहुत ही ज्यादा याद किए जाते हैं। देश के विभाजन से पहले भीष्म साहनी ने व्यापार भी किया और इसके साथ ही वे अध्यापन का भी काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता एवं इप्टा नामक मंडली में अभिनय का कार्य किया। भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी, जिनमें शामिल हैं मेरी प्रिय कहानियां, झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राग आदि। और वैसे तन्वी, उनके उपन्यास तमस पर वर्ष 1986 में एक धारावाहिक का निर्माण भी किया गया था।
एब्सोल्युटली, एंड नॉट जस्ट द पद्म भूषण, ही वाज आल्सो अवार्डेड साहित्य अकादमी फेलोशिप इन 2002 एंड ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आज का अतीत एंड ऑल्सो द बायोग्राफी ऑफ हिज ब्रदर द एक्टर ब्रदर बलराज साहनी टाइटल्ड Balraj, my brother, and that was in English. He also wrote the screenplay of Kumar Sahni's film Kasba in 1991, which is based on Anton Chekhov's story In the Gully. Although Sahni has been writing stories for a long time, he received recognition as a story writer only after the publication of his story Chief Ki Dawat in the Kahani magazine in 1956. That was a long time ago. And if we talk about the other eminent people who took birth on this particular day, that is 11th of July, the name I would like to mention here is Jhumpa Lahiri. Today is the birthday of Jhumpa Lahiri, a British-American author known for her short stories, novels and essays in English and more recently in Italian as well. Well, her debut collection of short stories won the Pulitzer Prize for Fiction and the Penn Hemingway Award for her first novel, that is The Namesake, that came in 2003 and that was adopted into a popular film of the same name. I'm sure many of our listeners, they have seen this movie, the movie starring Tabu and Irfan Khan. It was a very popular and an amazing movie. So this particular novel was a New York Times notable book, a Los Angeles Times book prize finalist, and was made into a major motion picture, like I said. Apart from that, if we talk about Lahiri, she also compiled, edited and translated the Penguin Book of Italian Short Stories, which consisted of 40 Italian short stories written by 40 different Italian writers. And she also translated some of her own writings and those of other authors from Italian to English. So we have an interview of her where she's describing her writing process. So let's just hear that.
You know, I think I write about loss. I write less about nostalgia, I think. I mean, it's connected, of course. But if that's really what the writing, you know, everything I've written has that at its core, the idea of loss. And as for how I write, I don't know how I write, but I certainly am not, you know, I mean, I go through, you know, a million drafts and I'm constantly reworking everything. So, you know, the idea of writing a sentence that's all set to go and then moving on to the next one is it's the opposite.
It's also the birthday of Stephen Lang, an American actor, and he's known for his roles in the films like Manhunter, Gettysburg and Tombstone, Gods and Generals, Public Enemies, and The Men Who Stare at Ghosts. and Don't Breathe and many, many more. But that one character that he played and he became famous for is the in the movie James Cameron's Avatar in 2009, for which he won the Saturn Award for Best Supporting Actor for his performance. And he, of course, reprised the role in that sequel as well, Avatar The Way of Water, in 2022. So from 2004 to 2006, he was co-artistic director of the Actors Studio. Let's hear one of his dialogues from the same film.
You are not in Kansas anymore. You are on Pandora, ladies and gentlemen. Respect that fact. Every second of every day. If there is a hell, you might want to go there for some R&R after a tour on Pandora. Out there beyond that fence, every living thing that crawls, flies, or squats in the mud wants to kill you and eat your eyes for jujubes. We have an indigenous population of humanoids called the Na'vi. They're fond of arrows, dipped in a neurotoxin that'll stop your heart in 1 minute. And they have bones reinforced with naturally occurring carbon fiber. They are very hard to kill. As head of security, it is my job to keep you alive. I will not succeed. Not with all of you. If you wish to survive, you need to cultivate a strong mental attitude. You've got to obey the rules. Pandora rule. Rule number one.
और तन्वी अब बात कर लेते हैं भारतीय न्यायविद एवं राजनेता रहे सी शंकरन नायर के बारे में जिन्होंने अपने स्वतंत्र विचारों और स्पष्ट वादिता के बावजूद उच्च सरकारी पद हासिल किए थे जो उस समय भारतीयों को बहुत मुश्किल से मिलते थे। आपका जन्म हुआ 11 जुलाई 1857 पालक्काड केरल में और आपने इस दुनिया से विदा ली 24 अप्रैल 1934 तत्कालीन मद्रास में। सी शंकरन नायर ने एक साथ मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में चरम भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा इसे बलपूर्वक कुचले जाने दोनों का विरोध किया था। सी शंकरन नायर एक प्रखर राष्ट्रवादी थे, इसलिए उन्होंने जहां एक ओर ब्रिटिश संसदीय संस्थाएं देशप्रेम और उद्योगों की सराहना की, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश राज के दुष्प्रभावों को भी उजागर किया था।
Today is also the birthday of Amitav Ghosh, an Indian writer. He won the 54th Gyanpith Award in 2018, India's highest literary honor. His ambitious novels use complex narrative strategies to probe the nature of national and personal identity, particularly of the people of India and South Asia. He has written historical fiction and non-fiction works discussing topics such as colonialism and climate change. He holds 2 achievement awards and 4 honorary doctorates. In 2007, he was awarded the Padma Shri, one of India's highest honors by the President of India. In 2010, he was a joint right winner along with Margaret Atwood of a Dan David Prize, and in 2011, he was awarded the Grand Prix of the Blue Metropolis Festival in Montreal. So, we have his novel, The Hungry Tide, an excerpt from his same novel. So, let's hear a small narration from it.
Language was both his livelihood and his addiction, and he often preyed upon by a near irresistible compulsion to eavesdrop on conversations in public places. Pushing his way through the crowd, he arrived within earshot, just in time to hear her finish a sentence that ended with the words, "Train to Canning?" One of the onlookers began to explain, gesticulating with an upraised arm, but the explanation was in Bengali and it was lost on her.
और तन्वी आज ही जन्मदिन है, 80 के दशक की युवाओं की धड़कन रहे मनोज तुली का। मनोज तुली जानती हो?
नो।
कुमार गौरव।
ओ।
उनका जन्म हुआ 11 जुलाई 1976 में। वे एक भारतीय व्यवसायी और पूर्व अभिनेता हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया है। अभिनेता राजदत्त कुमार के बेटे कुमार गौरव लव स्टोरी, तेरी कसम, स्टार, नामक और कांटे जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। चलते चलते आज का विचार कि छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई के तो सुकून हर पल मिलेगा।
Absolutely. With this, we have come to an end of our program. Let me just give credits to the entire team. The editor was Neelam Kaushik. We were the anchors were Tanvi Khurana and Ravi Kapoor. The steno was Sumit Karmakar, and production assistance has been given by Poonam Singh. Stay tuned for Samachar Prabhata, Hindi News Bulletin, which is coming up next, and that is followed by Morning News in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a wonderful day. Namaskar.